यशया अध्याय तेरा। यशया अध्याय तेरा में वो बाबुल के विषय भविष्यवाणी कर रहा है। आपको स्मरण होगा कि हमने यशया के अध्ययन आरंभ करते समय कहा था कि भविष्यवाणी की दो पूर्तियां हैं, निकट भविष्य में और दूर भविष्य में। भविष्यवाणियां एक प्रकार की दो धारी तलवार होती थी, जिसमें निकट भविष्य से संबंधित अर्थ होता था तथा दूर भविष्य से संबंधित अर्थ भी होता था। अतः अध्याय सात में जब यशया ने कहा था, यशया अध्याय सात पद 14, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इसका निकट भविष्य से संबंधित अर्थ था कि बच्चे के जन्म लेने से उसके सुबोध होने तक समरिया और सूर्या के राजा नाश किए जाएंगे। दूसरी ओर इसका दूर भविष्य संबंध था कि मसीह यीशु का जन्म एक कुंवारी स्त्री से होगा, जैसा कि मती अपने सुसमाचार में लिखता है। इस प्रकार भविष्यवाणी की पूर्ति निकट भविष्य में होती है तथा दूर भविष्य में भी होती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और 18 बाबुल के विषय में भविष्यवाणी का उल्लेख है। अध्याय 17 में धार्मिक बाबुल के विनाश की भविष्यवाणी है और व्यापारिक शहर बाबुल की भविष्यवाणी अध्याय 18 में है। इस अध्याय में बाबुल को दी जाने वाली पुकार प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और 18 के समरूप है। यहां यशाया बाबुल के धर्मतंत्र और व्यापार के विषय भविष्यवाणी दे रहा है। अतः ये भविष्यवाणी हमें अंत समय में ले जाती है। यशया अध्याय 13 पद 2 से लेकर 4 तक। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है, मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, मती अध्याय 24 पद 7। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। प्रभु के आने का एक और चिन्ह है कि विश्व की स्थिति ऐसी होगी कि चारों ओर युद्ध हो रहे होंगे। ये वही जन समूह है जिसका उल्लेख भजन संहिता 2 में किया गया है। भजन संहिता 2 पहला पद, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। वे एकत्र हो गए हैं, पृथ्वी के राजा यहोवा और अभिषिक्त या मसीहा के विरुद्ध एकत्र हो गए हैं। वे कहते हैं, हम उन्हें अपने ऊपर राज करने नहीं देंगे, परंतु स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हंसेगा। प्रभु उनको टट्ठों में उड़ाएगा और पवित्र पर्वत सियोन पर अपना राज्य स्थापित करके ही रहेगा। भजन संहिता 2 इस विवरण में ठीक बैठ रहा है, क्योंकि यहां क्लेश के अंतिम दिनों में जाति जाति के राज्यों के सम्मेलन का उल्लेख है। ये यीशु के आगमन से पूर्व का अंतिम दृश्य होगा। उनका उद्देश्य एकमात्र यह है कि प्रभु के राज्य की स्थापना में बाधा डाले। यशया अध्याय 13:5-6। वे दूर देश से आकाश की छोर से आए हैं, हां यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यनाश करने के लिए आता है। परमेश्वर के क्रोध का और पलटा लेने का दिन, महाक्लेश के समय परमेश्वर का न्याय उंडेला जाएगा। यशया अध्याय 13:7-10। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हरेक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है, कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे। मत्ती अध्याय 24 में प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन का उल्लेख किया है, और निश्चय ही हम महाक्लेश के युग में हैं। यशाया अध्याय 13:10। और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। अब ये विपत्ति किस पर पड़ेगी? क्या परमेश्वर की कलीसिया पर? क्या उन दासों पर जो उसके वफादार हैं? परमेश्वर ना करे, हम क्रोध के लिए नहीं हैं। पौलुस रोमियो और तेस्लोनिकियों की कलीसिया को यही लिखता है। ये उनके लिए है जो मेरी बात पहले ना समझे हो। परमेश्वर तो ये कहता है, यशाया अध्याय 13:11, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। ये संसार की बुराई और अधर्म का दंड होगा। परंतु पहले तेस्लोनिकियों 5:9, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। हमारे पाप यीशु मसीह ने क्षमा कर दिए हैं। उसने मेरे पापों के निमित्त परमेश्वर के क्रोध को उठा लिया। इसलिए जब परमेश्वर का क्रोध संसार पर भटकेगा, तब मैं उसका भाजक नहीं रहूंगा। ये उस संसार पर उंडेला जाएगा जो मसीह का परित्याग करता है। मैंने तो मसीह का परित्याग नहीं किया है। यही कारण है कि जब प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बातों का उल्लेख लूका अध्याय 21 में करता है, तब वो कहता है, लूका अध्याय 21:36, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। अतः जब ऐसा समय आ जाए तो मुझे यहां मत खोजना, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़ा होकर कहूंगा, महिमा आदर और पराक्रम और प्रभुता और अधिकार पाने के योग्य मेमना है। यशया अध्याय 13:11-12, मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से अधिक महंगा करूंगा। जबरदस्त जनसंहार होगा। यशया अध्याय 13:12-13, और आदमी को ओपिर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कंपवाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। ये बड़ी रोचक बात है क्योंकि परमेश्वर ने एक से अधिक स्थानों पर पृथ्वी के हिलाए जाने का उल्लेख किया है। परमेश्वर कहता है यशाया 24 अध्याय 19 और 20 पद, वो मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। पृथ्वी अपने स्थान से हट जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी पहले भी अनेक परिवर्तन देख चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय पृथ्वी का परिक्रमा पथ 360 दिन का था, 365 दिन 6 घंटे का नहीं। इस समय पृथ्वी का झुकाव भी 23.3 डिग्री पर नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर कभी जंगल होता था और दक्षिण ध्रुव पर रेगिस्तान था। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पृथ्वी पर महान उतल पुतल हुई है। ये माना जाता है कि ध्रुवों में स्थान परिवर्तन आया है। इमैनुअल विल्कोवेस्की लेखक, जिन्होंने वर्ल्ड्स इन कोलिशन पुस्तक लिखी है, उनका कथन है कि पृथ्वी जो आज पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पहले पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती थी। उनके पास इसका तर्क भी है। यदि आप वर्ल्ड्स इन कोलिशन पुस्तक को पढ़ेंगे तो अनेक तर्क आपको देखने को मिलेंगे। यहां रोचक बात जो है वो यह है कि प्रभु के राज्य के युग में परमेश्वर पृथ्वी को उसी रूप में ले आएगा जो आदम और हव्वा के समय में उसका था, आदन की वाटिका। तब रेगिस्तान समाप्त हो जाएंगे। बाइबल उस युग का उल्लेख करती है जब रेगिस्तान में जल के सोते होंगे, निर्जल स्थानों में नदियां होंगी। यशया कहता है, यशया अध्याय 35 पद 1, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, अर्थात रेगिस्तान समाप्त हो जाएंगे, संपूर्ण पृथ्वी एक विशाल वाटिका बन जाएगी। इस विचार के आधार पर पृथ्वी के कंप कपाने का अर्थ ये हुआ कि एक बार फिर उथल पुथल होगी और ध्रुवों का स्थान परिवर्तन होगा और पृथ्वी की धुरी फिर से सीधी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावशाली परिवर्तन आएंगे। ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी और वहां हरियाली होगी, क्योंकि मौसम गर्म हो जाएगा। बर्फ पिघल जाने से और पृथ्वी का सूर्य के सामने सीधा हो जाने से वाष्पीकरण भी अधिक होगा और पृथ्वी पर अतः जल होगा। उस समय पृथ्वी पर ध्रुव तथा भूमध्य रेखा पर बराबर का तापमान होगा। अति ठंडा और अति गर्म मौसम समाप्त हो जाएगा। हवाएं ध्रुवों की ओर से उष्ण क्षेत्रों की ओर बहेगी। उस समय प्रचंड हवाएं नहीं चलेंगी। उस समय वायु चलेगी और हरियाली ही हरियाली होगी, यहां तक कि मरुस्थल डेथ वैली में भी एक मनोरम वाटिका होगी, जिसमें नदियां होंगी, जल प्रपात होंगे, आकर्षक पौधे होंगे और क्या नहीं होगा। धर्मशास्त्र में लिखा है कि संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर इसका पुनरुद्धार करेगा। पृथ्वी का कप कपाना और अपने स्थान से हट जाने का अर्थ यही हो सकता है। वे भौतिक शास्त्री जो ध्रुवों की धुरी के स्थान परिवर्तन का विचार व्यक्त करते हैं, वे पृथ्वी के डगमगाने का उल्लेख करते हैं कि ध्रुवों की स्थान परिवर्तन में पृथ्वी डगमगाती है। इसी बात को यशया ने भी लिखा है कि पृथ्वी एक मतवाले मनुष्य के जैसे लड़खड़ाएगी और अपने स्थान से टल जाएगी, अर्थात उसके ध्रुवों का स्थान बदल जाएगा। तब वातावरण सर्वदा भिन्न हो जाएगा और पृथ्वी यीशु मसीह के राज्य के ठीक ठीक उसी प्रकार अनुकूल हो जाएगी जिस प्रकार की सृष्टि के आरंभ में थी। उस समय रेगिस्तान नहीं थे, संपूर्ण पृथ्वी उपजाऊ थी। आज जनसंख्या वृद्धि की बात की जाती है, परंतु यदि हवाई सर्वेक्षण किया जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक बड़ा भाग निर्जल और अनउपजाऊ होने के कारण मनुष्य के रहने के योग्य नहीं है। परंतु जब परमेश्वर उसका पुनरुद्धार करेगा, तब परमेश्वर की संतानों के रहने के लिए बहुत स्थान होगा। यह बड़ा रोचक संदर्भ है। इसका तात्पर्य समझने हेतु हम स्वतंत्र हैं, परंतु अभी वास्तव में कुछ नहीं जानते। यशाया पुनः कहता है, यशाया अध्याय 13:13, सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। अतः पृथ्वी का डगमगाना आदि सब परमेश्वर के न्याय के समय होगा, जब वह उतल पुतल करेगा। ये सब प्रभु के आगमन से पूर्व परमेश्वर के क्रोध के कारण होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में लिखा है कि पृथ्वी के वासी चट्टानों और पहाड़ों को पुकारेंगे। प्रकाशित वाक्य 6:16-17, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? अब आप ही सोचिए कि जब परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है कि उसने हमें क्रोध के दिन के लिए नहीं रखा है, तो वो क्यों कर हमें उस युग तक रोके रखेगा? ये कैसी तर्कहीन मानसिकता है जो कहती है कि हम परमेश्वर के क्रोध के दिन यहां होंगे। चाहे कोई हमें पलायनवादी कहे या कायर कहे, ये विचार मेरी समझ से बाहर है। यशया आगे कहता है, यशया अध्याय 13:14, और वे खदेड़े हुए हिरण, इसका संदर्भ यहूदियों से है। यशया अध्याय 13:14-15, वह बिन चरवाहों की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वो भेदा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वो तलवार से मार डाला जाएगा। भीषण क्रोध, यशया अध्याय 13:16, उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। जैसे मैंने कहा है कि भविष्यवाणियां निकट भविष्य और दूर भविष्य से संबंधित होती है, ये पद 14 के साथ संयोजित होकर निकट भविष्य अर्थात बाबुल द्वारा आक्रमण किए जाने के विषय में ये भविष्यवाणी है। भजन संहिता 137 का रचने वाला लिखता है, भजन संहिता 137:1-4, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं? तब वो बाबुल को श्राप देता है और कहता है, भजन संहिता 137 पद 8 और 9, क्या ही धन्य वो होगा जो तुझ से ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसे तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वो होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। ये बाबुल द्वारा यरूशलेम के विनाश का वर्णन था। पद 17 में लिखा है कि बाबुल का भी नाश होगा। यशाया अध्याय 13 पद 17 से लेकर 19 तक, देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो ना तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और ना सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया ना करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस ना खाएंगे और बाबुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं वो ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। ये बड़ी रोचक बात है कि यशाया मादियों के हाथ बाबुल के विनाश की भविष्यवाणी करता है। इस समय अशूर साम्राज्य ही प्रमुख शक्ति था। अशूरों पर अभी बाबुल ने विजय नहीं पाई थी। यशया की इस भविष्यवाणी के समय मादी लोग एक छोटी सी नगण्य जनजाति थी। भविष्य केवल परमेश्वर ही जानता था। यहां परमेश्वर सिद्ध करता है कि वही परमेश्वर है और इस पुस्तक का लेखक भी वही है और वो हमारे समय की सीमा से परे है। वो आरंभ से अंत तक सब जानता है। वो बाबुल के सत्यनाश के विषय में कहता है, यशाया अध्याय 13 पद 20 से लेकर 22 तक, वो फिर कभी न बसेगा और युग युग उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे और ना चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहां शुतुरमुर्ग बसेंगे और लंपट भूत वहां नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। और उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। मादियों द्वारा बाबुल का विनाश निश्चित है।